अब आगे एक दावा था, उसकी दलील। थोड़ा सा तमहीद लीजिए, फिर अगली आयत को पढ़ेंगे। जैसे मैंने अभी आज भी तذکرہ किया कि मक्का वालों में कुरैश मक्का को बड़ी इज्जत हासिल थी। क्यों? क्योंकि ये खाना काबा की ज़ाहरी खिदमत बहुत करते थे। अब हुआ क्या कि इस खिदमत को उन्होंने अपनी जन्नत की कीमत समझ लिया। करते थे खिदमत, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन उस घर से जो पैगाम उठता था ना, उस पैगाम का असर उनकी ज़िंदगियों में नहीं दिखता था। बात समझ गए? दूसरे भी इनकी इज्जत करते और ख़ुद भी इन्होंने अपने लिए यही सोच लिया हुआ था कि देखना, हमने खाना काबा की खिदमत और इज्जत करके ही जन्नत में पहुंच जाना है। तो अल्लाह सुबहान तआला आयत 17 में फरमाते हैं, मा कान लिल मुशरिकीन अन यअमुरु मसाजिद अल्लाह। मुशरिकों का ये हक नहीं है कि वो आबाद करें अल्लाह की मस्जिदों को। अपने ऊपर शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफरी, अपने ऊपर कुफर की गवाही देते हुए। मतलब क्या है कि ये मसाजिद तो अल्लाह के घर हैं, ये काबा अल्लाह का घर है और तौहीद का मरकज़ है, जबकि कुरैश मक्का तो अलल एलान कुफर पे डटे हुए हैं और अल्लाह के घर के मतवली भी बने बैठे हैं। ऐसा क्यों कर हो सकता है? अल्लाह के इन दुश्मनों का इसकी मस्जिद के ऊपर हक कैसे हो सकता है? तो सवाल पैदा होता है कि खिदमत तो वाकई बड़ी करते हैं, इसका क्या होगा? तो फरमाया, उलाइका हबितत आमालुहुम वफिन नारिहुम खालिदून। ये वो लोग हैं जिनके सारे अमल ज़ाया हो गए और आग ही में वो रहेंगे हमेशा हमेशा। कुछ नहीं हुआ सोच के? खाना कहा कि खिदमत करने वाले आग में जाएंगे, उनके अमल ज़ाया हो जाएंगे और हमेशगी है। तो आप ज़रा सोचिए, फिर दूसरों की क्या बात है जो क्लबों और नाच गाने की चीज़ों की टेक केयर करते हैं। बात समझ रहे? पहली बात लिखिए, नुमाइशी नेकियां काम नहीं आएंगी क़यामत के दिन। वल्ला ही मेरा इधर आके पढ़ाना भी नुमाइशी नेकी हो सकता है, अगर मेरा अमल मेरे कहे के बराबर नहीं है। मैं सारा दिन आपके स्कूल को साफ़ सुथरा करती रहूँ, चमकाती रहूँ, सजाती रहूँ, और मेरी कोशिशें आप देख रहे हैं कि मैं कितनी मेहनत करती हूँ आपके स्कूल को साफ़ रखने की, पर कोई ज़रूरी नहीं कि मेरी ये मेहनत मुझे जन्नत में ले जाए। आप मुझे नेक समझेंगे, आप मेरे नाम के साथ लिख देंगे इस स्कूल की सारी सफाई ये करती हैं, बट अगर मेरे सीने में कुफर है, मेरे आमाल में रियाकारी है और दिखावा है, शाहिदीन अला अनफुसिहिम बिल कुफर की मुँह बोलती मैं तस्वीर बनी बैठी हूँ, मुझे आपके इस स्कूल की खिदमत तो छोड़ दीजिए, कहीं जॉब के तौर पर सही खाना काबा की भी खिदमत करनी पड़ गई तो मुझे वहाँ भी कुछ नहीं मिलना। है डरने वाली बात के नहीं? तो बात दिल है। ये लोग हमारी ज़ाहरी नेकियां देखते हैं, अल्लाह नहीं देखता। हाँ, गुमान किया जा सकता है, दिल का सुकून आपको बताएगा, आपकी हालत आपको बताएगी, लेकिन यहाँ ये बता दिया कि बैतुल्ला की देखभाल ही क्यों ना हो, हाजियों की खिदमत जैसे ही अमाल क्यों ना हो, पर इस पे फूलो और समाओ नहीं। ईमान के बग़ैर अल्लाह के नज़दीक उन अमाल की कोई हैसियत नहीं है। वजह के कुफर के टेंक्चर ने सारी नेकियां ज़ाया कर दी। आज तो इतना आसान है इस बात को समझना, एक डिलीट का बटन दबता है आपका 10 सफ़ों का मजमून ज़ाया हो जाता है। आप हो कि किसी को समझ कहाँ से मेमोरी से निकालो, ढूंढो कैसे उसको, रीडू करो, अनडू करो, लेकिन याद रखिए हमारी नेकियां ख़तरों में होती हैं। हर वक्त अपने आप को छान पटक के रखिए कि कहीं मैं सही काम कहती तो हूँ लेकिन क्या मैं करती भी हूँ। और आप देखिए, इसमें तीन सज़ाएँ हैं, जहन्नुम भी है, हमेशगी की भी बात है और उनके अमाल के ज़ाया होने की भी बात है। तो क्या खुलासा है? अब वो तो मस्जिद थी, मस्जिद हराम। आज इससे उलमाए कराम ने ये बात भी दलील में ले ली कि वो लोग जिनके अकायद में शिर्क हो और वो लोग जिनकी नियतों में फतूर हो, वो मस्जिदों के बड़े बड़े ट्रस्टीज़ क्यों ना बन जाएँ, प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर क्यों ना बन जाएं, अल्लाह के हाँ उनकी कोशिशों की कोई कदर नहीं। मुझे आपको किसी को जहन में लाने की ज़रूरत नहीं है इस वक्त, लेकिन ये बात रोज़े रोशन की तरह वाज़े है कि आज बस दफ़ा मस्जिदों के नाम पर वो लोग इजारादारी कायम किए बैठे होते हैं जो नमाज भी नहीं पढ़ते, वो लोग प्राइम मिनिस्टर और सदर और वज़ीर और न जाने क्या कुछ नाम अपने साथ जोड़ के बैठे होते हैं कि जिनको शायद कुरान की कोई एक अलिफ बात आ भी समझ ना आती हो। तो ख़तरे की बात है, خاص طور پہ ویسٹ میں رہتے ہوئے صدارتیں وزارتیں اور ٹرسٹیز اور ٹریئرر بننا بہت آسان ہوتا ہے کیونکہ یہاں یہ کام مسلمانوں نے اپنے ان پہ کرنے ہوتے ہیں. اور یقین کیجئے میں نے تو جن مسجدوں کے اندر ایشوز دیکھے ہیں اس کی بڑی وجہ یہی دیکھی ہے کہ جو لوگ شورا میں تھے وہ خود دین اور قرآن سے نہیں جڑے ہوئے تھے. تو اس لیے ناموں پہ مت جائیے, اپنے اور دوسروں کے اعمال کی فکر کرنی ضروری ہے. اور اس کے لیے تیاری اس بات کی کرنی چاہیے کہ ایک بندہ ہمیشہ پہلے خود دین سیکھے. آپ بنے ٹرسٹی, کوئی ہے نہیں تو آپ بن جائیے, بٹ ساتھ علم لیجیے. آپ ٹریئرر بنے مسجد کے, بٹ پہلے قرآن سیکھیں ساتھ. آپ مسجد کے پریزیڈنٹ بن جائیے, آپ اس کی شورا کے ممبر بنیے, نو پرابلم ایٹ آل, لیکن ساتھ ساتھ اپنا علمی سفر تو بڑھائیں. اگر آپ کے اپنے عقائد میں بدعت ہے, شرک ہے اور لا علمی اور جہالت ہے, آپ جا کے اس مسجد کا دروازہ روز صبح فجر پہ کھول آئیں اور خود چاہے نماز پڑھیں نہ پڑھیں, اللہ کے ہاں اس نماز کے لیے وہ چیز, وہ قدر و منزلت نہیں ہے جو آپ اور میں سوچتے ہیں. تو یہاں یہ چیز مجھے آپ کو ڈراتی. چلیں یہ تو ساری مردوں کی باتیں ہم کیے جا رہے ہیں, اپنے لیے بھی لے لیتے ہیں. ہم خواتین تو عموماً مسجدوں میں نہیں جاتی, لیکن ہمیں دین کے کسی کام میں موقع مل جاتا ہے اللہ کے حکم سے, اللہ کا خاص فضل ہوتا ہے, تو اپنی اصلاح لازمی ہے. سب کی فکر ہو اور خود کو جلائیں آگ میں, یہ انسان کو کبھی بھی فائدہ نہیں دے گی. وہ ایک کسی کی بات پڑھی تھی بہت اچھی تھی کہ شمع کی طرح نہ بنو جو دوسروں کو تو روشنی دے دیتی ہے لیکن خود جل جاتی ہے. یعنی ایسے عالم مت بنیے کہ لوگ آپ کی باتیں سن سن کر تو ماشاءاللہ جنتی بن گئے اور آپ جہنم کی آگ میں جل گئے, اور اللہ تعالیٰ آپ کی میری اصلاح فرما دے. اپنے آپ کو ہمیشہ ان چیزوں کی نظر سے دیکھیں. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا یہ لوگ تو نہیں مسجدوں کو بات کریں گے, اور اسے ایک اور چیز بھی ہے, کسی مسجد میں کتنی رونق کیوں نہ ہو, ہزاروں لوگ کیوں نہ ادھر آتے ہوں, لیکن اگر وہاں شرک ہے, وہاں اگر کفر ہے, وہاں اگر عقائد میں ضعف ہے, تو پھر وہ جانے اور ان کا رب جانے. مجھے آپ کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن اصل چیز تعلیم ہے. ٹوٹی ہوئی کرسیوں پہ بیٹھیے لیکن توحید سیکھیے, اور صوفوں پہ اور کوچیز پہ بیٹھی ہے لیکن لوریاں اور دلاسے اور کہہ لیجئے کہ بہت ہی ڈائلیوٹڈ قسم کا دین سیکھیں گے تو وہ خطرے کی بات ہوگی. اس کے لیے انسان کو ہمیشہ اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے. پھر اس کے بعد آگے خوبی کس کی ہے, صحابہ کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی, کہ پھر کون مسجدوں کو آباد کرنے والا ہے. فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. یقیناً اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں. اب دل میں دعا کریں اللہ ہمارا نام اس میں لکھ لیں. کون مسجدوں کے آباد کرنے والے؟ نمبر ایک جو ایمان لائیں اللہ پر اور یوم آخرت پر, نماز قائم کریں, زکوٰۃ دیں اور نہ ڈریں کسی سے سوائے اللہ کے. اب ذرا دیکھیے ماشاءاللہ کتنی پیاری لسٹ ہے. آپ کو آیت بر یاد آ رہی ہے؟ مجھے تو وہی یاد آ گئی. اس پہ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر وقام الصلاۃ. بالکل اس آیت کا آگے چل پڑتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ مسجدوں کے آباد کاروں کی خوبیاں لکھیے. نمبر ایک, آمن باللہ. پہلے اپنے تو تار دل کے جڑے ہوں اللہ سے, ایمان ایسا پیارا ہو کہ اللہ سے محبت سب سے زیادہ, اور ایمان میں محبت بھی ہے, خوف بھی ہے, امید بھی ہے, توکل بھی ہے, خشیت بھی ہے, رجا بھی ہے. یہ سوکھا پیکا ایمان نہیں ہے جو آپ اور میں اللہ تعالیٰ پر لاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا جی اللہ پا من تو باللہ و کتبی و رسولی. یہ ایمان تو دل کی دنیا کو بدل دیتا ہے. یہ ایمان ہی تو ہے جو بندے کو رات کو بستر سے اٹھاتا ہے کہ اٹھو الصلاۃ خیر من النوم. یہ ایمان ہی ہے جو قربانیاں دینا سکھاتا ہے. یہ ایمان ہی ہے جو بندے کو اللہ کے حکم سے ہجرتیں کرنے سکھاتا ہے, جہاد کرنا سکھاتا ہے, جد و جہد کرنا سکھاتا ہے. یہ ایمان ہی ہے جو بندے کو اللہ کے آگے سرخرو کرتا ہے, اور اسی ایمان کی بدولت تو بندہ پھر سب چیزیں تج دیتا ہے اور اپنے رب کو راضی کرنے لگتا ہے. تو اپنے ایمان کا جائزہ لیں, کیونکہ الحمدللہ مسجد ہو کے مدرسہ ہم وہاں آتے جاتے دکھتے ہیں, بظاہر لوگ بھی ہماری گواہیاں دیتے ہیں. تو کوئی بات نہیں, کمی ہے تو درست کر لیں. اور آپ کو اگر میں آج کے پورے سبق کا پن پوائنٹ دے دوں نا, اللہ سے پیار کریں, آمنت باللہ. ہر امتحان میں کامیابی کا نسخہ, ہر خواہش پوری ہو جائے گی, ہر تمنا آپ کے ہاتھوں میں ہے. شرط کیا ہے؟ کہ اللہ پر ایمان لے. اللہ پر ایمان لائے بغیر بندہ کبھی اپنے آپ کو اللہ کے راستے کے تقاضوں کو پورا کرنے کے قابل کر ہی نہیں سکتا. تو ایمان اللہ پر, توقعات, امیدیں, خوف. چلیے اس کو اتنا نہیں کھینچتے, آگے چلتے ہیں. والیوم الآخر, آخرت پہ کیا ایمان؟ کہ بس یہ آنی ہے قیامت اور مریں گے. نہیں, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ اور شَرًّا يَرَهُ. جو کرتی ہوں, جو کہتی ہوں, اس کو بھگتنا پڑے گا. ہر اچھی اور بری میرے نامۂ اعمال میں ڈل رہی ہے. ذرا ایمان کے لیول کو لا کے سامنے سوچئے, کیا مجھے اس بات کا یقین ہے کہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے پیش کی جاؤں گی؟ الحمدللہ پھر کہوں گی کہ تھیوریٹیکل ہے, سنا ہوئے, ہم نے بھی قیامت آنی ہے, ہمیں بھی پتہ نیکیاں بدیاں تلنی ہیں, اور دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال اور بائیں ہاتھ میں اتنا رٹا رٹایا ہمارا عقیدہ آخرت کا کہ ڈر ہی نہیں اب لگتا. ایک بچہ شاید امتحان سے زیادہ ڈرتا ہوگا, رزلٹ والے دن اس کے پاؤں ہاتھ زیادہ کانپتے ہوں گے, لیکن قیامت کے دن ریئل میں میرے ساتھ کیا ہونا ہے, میں اس کو سوچ کر کتنی دفعہ ڈرتی ہوں. یہ اپنے آپ کو بندہ پوچھے, یہ ہمارے لیے ضروری ہے. اور یاد رکھیے گا کہ جتنا یہ عقیدہ پختہ ہوگا ہم اتنے سیدھے ہوں گے. یہ نیویگیٹر ہے آپ کا میرا. ہمارا نیویگیٹر کیا کرتا ہے؟ ہماری گاڑی کو ادھر سے ادھر جانے سے روک لیتا ہے. ہم سیدھے جاتے ہیں, ذرا اس کو بند کر دیں, ٹیڑھا میڑھا کر دیں, گاڑی کی الائنمنٹ بدل جائے گی, آپ ویسے ہچکولے کھائیں گے. ایمان بالآخرہ جو ہے نا, یہ آپ کا میرا نیویگیٹر ہے. جا کے ادھر رہی ہوں. اللہ کہتا ہے تم جنت کی بات کرتے ہو, تمہیں تو ہدایت بھی نہیں ملنی اگر تمہارا ایمان باللہ پکا نہیں ہے. تو اس کو بھی تھوڑا سا چیک کریں. تیسری چیز بولیے کیا؟ اقام الصلاۃ. چلیے ماشاءاللہ دسویں پارے پہ پہنچ گئے. نمازوں کے کیا حالات ہیں؟ اور یقین کریں, کہنے کو تو یہ ایک ذاتی معاملہ ہے, لیکن زندگی کے ہر پہلو سے دکھتا ہے. اگر آپ وقت پہ نماز پڑھتے ہیں نا, میں کبھی نہیں مان سکتی کہ آپ وقت پہ کوئی پھر دوسرا کام نہیں کریں گے. نماز آپ کو بیدار کر دیتی ہے نا رات کو, صبح فجر کے لیے, تو آپ پھر دوسری کمٹمنٹ کے لیے بھی اٹھیں گے. نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا یقین ہے نا, تو باقی چیزوں میں بھی ہوگا. تو نمازوں کی چوریاں عملی میدان میں کھلتی ہیں. ہم نمازیں قضا کرتے ہیں, لیٹ کرتے ہیں, بھاگ دوڑ کے پڑھتے ہیں, ایسا ادھر ادھر چھڑ سجدے دیے اور سب کام آرام آرام سے. نماز جلدی میں, لو میں ابھی پڑھ کے آئی, جلدی میں آئی, جلدی کرتی ہوں. اور یا شروع میں پڑھ لیتے ہیں جلدی تاکہ اگلے کاموں میں فارغ ہو جائیں, فریش ہوں, اور یا سارے کاموں سے فارغ ہوا کر پھر اس کو پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اپنی نمازوں کے آئینے میں خود کو پہچانتے ہیں. چوتھی چیز, وات زکاتا, زکوٰۃ دینی ہے. دیے میں نے اس سال کی اپنی زکوٰۃ, کیا میں واقعی اپنے ایک ایک آنے پائی کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیتی ہوں, یا بیچارے شوہر کے کندھے پہ ڈال دیتی ہوں کہ وہی دیں گے, یا باپ اور بھائی دیں گے؟ نہیں, آپ کو اپنی دینی ہے, اور ہر ایک نے اپنی دینی ہے. ہاں کوئی دے دیتا ہے تو پھر آپ کے اوپر احسان ہے, آپ ان کے مزید احسان مند ہوں اور شکر گزار ہوں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ایسے مرد دیے ہیں جو ہماری ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہیں. لیکن اگلی بات دیکھیے, یہاں تک تو مجھے پتہ ہے 100 میں 80 90 نمبر آ ہی جائیں گے کئیوں کے, لیکن ولم یخش الا اللہ, یہ سبق کا مرکزی نقطہ, لم یخش الا اللہ, اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈریں. آپ کو پوچھتی ہوں, آپ ماشاءاللہ قرآن کی کلاس میں بیٹھے, میں ہم باہر والوں کو تو پوچھتے بھی نہیں, حق بھی نہیں. کون کہہ سکتا ہے کہ مجھے اللہ کے سوا کسی کا ڈر نہیں ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں, یقین کے ساتھ کہہ کر دیکھیں, آپ کا دل ہل جائے گا. ہم تو ہر ایک سے ڈرتے ہیں الا ماشاءاللہ. اور یاد رکھیے, یہ جو ہمیں امیدیں ہیں نا, ہم جو کہتے ہیں نا, نہیں شوہر کو ناراض نہیں کرنا. دیکھیے میں یہ نہیں کہہ رہی, میں تو آپ کو سبق یہ پڑھاتی ہوں کہ شوہر کو ناراض نہیں کرنا آپ نے, لیکن میں آپ کو صرف اب اندر کا یہ جملہ سمجھانے لگی ہوں. ہم اپنے شوہروں کی عزت اس لیے نہیں کرتے کہ میں ان سے پیار بڑھا, شوہروں کی ناراضگی اور ان کے غصے اور ان کی بہت بڑی بڑی باتوں سے اس لیے نہیں ڈرتے کہ پیار بڑھا اور اللہ نے رشتہ جوڑ دیا. نہیں, ڈر یہ ہوتا چھوڑ دیں گے, شوہر نے چھوڑ دیا تب مجھے اس عمر میں کون لے گا. ہم اپنے رشتے داروں کو کیوں نہیں چھوڑتے؟ چھوڑنے سے میرا ان کی غلط کیوں مانتے ہیں؟ اب ان کو چھوڑ دیا تو پھر آگے بچوں کے رشتے کہاں ہوں گے؟ جوان اولادوں کی باتیں ہم کیوں مان لیتے ہیں؟ غلط بھی, میں صحیح کی تو بات ہی نہیں کر رہی, ایک بات بھی صحیح کی نہیں کہہ رہی. इस्लाम तो पूरा हमें सिला रहमी सिखाता है, लेकिन ये आज का सबक हमें क्या बार बार कह रहा है? गलत नहीं माननी, सही माननी है। तकाबुल पे आ गया तो फिर अल्लाह का दीन है। हम शौहर की गलत मान लें और अल्लाह की सही ना माने तो फिर सॉरी, लम यख्शा इल्लल्लाह वाले लोगों में हम नहीं हैं। हाँ, शौहर की ठीक मानी है और हर ठीक मानी है तो कभी वो आपको गलत कहेगा भी नहीं। ये भी लिख लें बात, हमारे शौहर, हमारे बच्चे, हमारे प्यारे, हमारे ख़ानदान वाले उस वक्त हमसे गलत मुतालबा करते हैं जब हम भी बहुत सारी उनकी अच्छी नहीं मानते। फिर चोट आप पे ही पड़नी है, मुझे माफ़ करें। मेरी हमदर्दी हमेशा शौहरों के साथ ही होती है, पता नहीं क्यों। क्यों कि हम अपनी मर्जी की बातें उनकी मान लेते हैं और जो नहीं मानी वो शौहर नहीं, वो प्लकिंग भी शौहर ही कहते हैं करो, और वो भमों के बाल भी वो मर्दी की वजह, और पर्दा तो मियाँ को पसंद ही नहीं, और निकाब को तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे, और मेरा कुरान पढ़ना तो उनको जहर लगता है। भाई आप सलीके के साथ घर चलाएं, वो खुद कहेंगे जाओ 2-4 घंटे छोड़ दो मुझे। यकीन कीजिए, लम यख्शा इल्लल्लाह, ये दीन की मिराज है। और इस सूरत के बाद तो ज़रूर आनी चाहिए, कहें खुद को मैं नहीं डरती किसी से अल्लाह के सिवा। अपने शौहर के सामने कहें, अल्लाह की कसम मैं गलत बात में आपसे नहीं डरती, हाँ मैं आपकी सही बात नहीं मानती, उस पर मेरे से दरगुजर कीजिए। ये झूठ है, ये ख़ानदान का नाम लेके गलत रस्मों में दाखिल होना, ये गुनाह की महफिलों में जाना, और ये नमाजों को छोड़ना और दीन को पीछे करना, और नाम लेना छोटे छोटे पुतलों का। एक पुतला शौहर है तो एक बेटा है तो एक बच्चा है, हम तो 1 साल के बच्चे का नाम ले लेते हैं। वल्लाही मेरा बच्चा नहीं पसंद करता, मेरी बच्ची पसंद नहीं करती, मेरे आप ससुराल नहीं पसंद करते, आप मेरे बच्चों के ससुराल नहीं पसंद करते। ये कमी है हमारे ईमान में। और देखिए, इसका ताल्लुक आमना बिल्ला से जुड़ता है, वो पहला था, ये आखिरी है। जब तक लम यक्ष इल्लल्ला नहीं होगा ना, आमना बिल्ला नहीं होगा। और जुर्रत पैदा कीजिए। देखिए, अल्लाह के नबी ने एक सहाबी को अमीर बनाकर सहाबा के सर पर भेजा, और अमीर की इताअत फ़र्ज़ होती है, तो वो कहते गए लकड़ियाँ तोड़ो, उन्होंने तोड़ दी, इकट्ठी करो इकट्ठी करो, करती है। इतना मुश्किल काम था सफ़र में, ये सब कुछ किया, कहा अब इसमें आग लगाओ, बेचारों ने आग भी लगा दी। फिर कहा अब सारे इसमें बारी बारी कूद जाओ, इस पे खड़े हो गए। ये क्या बात है, इस आग से बचने के लिए तो इस्लाम कबूल किया, तो अब हम आग में गिर जाएं? नहीं मानी, वापस गए, मुकदमा अल्लाह के नबी के सामने गया, कहा अल्लाह के नबी आपने इनको हमारे ऊपर अमीर बनाया था, हमने इनकी ये भी मानी वो भी मानी ये भी मानी, लेकिन ये हम कैसे मानते, क्योंकि आग में गिरना खुदकुशी करना हराम है, तो क्या हमने सही किया? खौफ ये था कि कहीं हमने अपने अमीर की इताअत में कमी तो नहीं कर दी। फरमाया नहीं, तुमने ठीक कहा, अगर तुम इनके कहने पे आग में कूद जाते तो तुम हमेशा आग में रहते। लम यख्शा इल्लल्लाह, हुक्मरान है, बड़ी सल्तनतें हैं आपके पास, सुपर पावर्स हैं, उनके गलत रूल्स हैं, गलत बातें हैं, छोटे से जो हम अपने घर के ख़ानदान के छोटे रूल्स से नहीं डरते उनको मान जाते हैं, तो बड़ों ने तो हम पे और रोप डालना है। तो ये ईमान की पीक है। और ऐसे लोग हैं, इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, अल्लाह के घर आबाद ही उन लोगों के नाम पे होते हैं जो किसी से नहीं डरते अल्लाह के सिवा। अपनी ज़िम्मेदारियों को बुरा कीजिए, अपने अखलाक को खूबसूरत रखिए, अपने मिजाज में नरमी और ठहराव लाइए, सलीका रखिए और अपना हक लीजिए। ये जो आप कहते हैं ना, हम तो पिसे हुए लोग हैं, हम तो दबे हुए हैं, हमने असल में कभी अपनी बात मनवाई नहीं, ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये फिर हमारी कमियां कमजोरियां दूसरों को हम पे हावी करती हैं, वरना किसी ने खुदा नहीं छोड़ा होता। याद रखिए, कोई शौहर अपनी बीवी के जहन्नुम का जरिया नहीं बनेगा कि मेरे ऊपर कदम रख के तुम जहन्नुम में चली जाओ। अच्छा, ये सारा कुछ कर ले तो फसाउलाइक यकूनु मिनल मुहतदीन, तो उम्मीद है कि ये लोग रहयाब होंगे, शोर फिर भी नहीं। हाँ, यहाँ असा है यकीन के मानों में, अरबी में ये कसूल है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा एक लूप होल छोड़ ही दिया। इतना कुछ कर भी रहे हो ना, यानी हम सारे कहते माशाल्लाह जी सारे ही नंबर पूरे, हम नहीं डरते किसी से अल्लाह के सिवा, तो फिर भी फख्र ना करना, उम्मीद है कि तुम्हें हिदायत। और मुहतदीन की बात है, यहाँ फिर नोट करें, एक है जन्नत मिलना और एक है हिदायत मिलना। एक जुमला लिख ले आज इस सूरत का, जम बना दे, जन्नत मिलने से पहले हिदायत मिलना लाजमी है। जिनको हिदायत नहीं मिली दुनिया में, उनको जन्नत कहाँ से मिलेगी? ये सीधी सी बात है, आपको मैप ही नहीं मिला कहीं जाने का, तो वहां पहुंचेंगे कैसे? रास्ता ही नहीं पता, डायरेक्शन नहीं पता, साउथ नॉर्थ वेस्ट ईस्ट नहीं पता, तो मुझे बता सकते हैं कि आप पहुंचेंगे कैसे? तो हिदायत से दूर रहने वाले जन्नत से दूर है। इह दिन सिरातल मुस्तकीम, जब आप और मैं कहते हैं ना, तो असल में हम हिदायत मांग रहे होते हैं, क्यों? कि हिदायत ही सबीलुल जन्नत है, यही रोड टू जन्नत है। फिर अल्लाह ने डांटा, देखिए अगली आयत थोड़ी सी सख्त है, अजाल तुम शिकायत अल हाजी, यहाँ बराह रास कुरैश मक्का को कहा जा रहा है तुम, यानी ऊपर वाली आयत में मुसलमानों को थोड़ा सा खिताब किया गया और अब इसमें मुशरिकीन को, कैसे? अजाल तुम, क्या तुमने बना लिया शिकायत अल हाजी, हाजियों को पानी पिलाना। ये लफ्ज़ साकी सक्का उर्दू में बोलते हैं ना, पिलाने वाला, हाज हाजियों से हुज्जाज की जमा, व इमारत अल मस्जिद अल हराम, और आबाद करना मस्जिद हराम को। ये जो लफ्ज़ उमरा है ना, वो भी इसी से ही है, उमरा, उमर, आमरा का मानी होता है आबाद करना। ये जो मेरी आपकी उम्र है ना, जो हम गुजार रहे हैं, ये भी इसी से है। जिस्म में रूह होती है ना, तो हमारी उम्र है, जिस दिन रूह खिंचेगी हमारा जिस्म बुत बन जाएगा। तो आप देखिए, जिंदा से प्यार है तो मुर्दा से खौफ नहीं आता। इधर रूह निकल जाए तो उस मुर्दे के साथ रात किसी को तुम बैठ जाओ इसके पास, खौफ आएगा, क्योंकि वो आबादी ख़त्म होगी जिस्म की। तो अमारत अल मस्जिद अल हरामी, क्या तुम समझते हो हाजियों को पानी पिलाना और मस्जिद हराम को आबाद करना बराबर? कमन आमन बिल्लाही वल यौमिल आखिर, उस शख्स के जो अल्लाह पर ईमान लाया और यौम आखिर पर लाया, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन वजाहद फी सबीली, अब ऊपर की जो लिस्ट थी ना पांच की, उसमें ये छठा लफ्ज ऐड कर लें, दोहरा देती हूँ, आमन बिल्ला वल यौमिल आखिर, अकामत सला, आतस जका, लम यक्ष इल्लल्ला, पांच वो थे, अब छठा लिख लें, वजाहद फी सबीलिल्लाह, और उसने जिहाद किया, जिद्दोजहद की अल्लाह की राह में। मुशरिकीन मक्का इस बात पर बड़े नाजां थे, फरहां थे, फख्र करते थे कि हमने जी बैतुल्ला को आबाद किया हुआ है, हम हाजियों को पानी पिलाते, कितना नेकी का काम है। अल्लाह कहते हैं, क्या दिल ईमान से खाली हो, कुफर की शहादतें हों, ईमान बिल आखिरा मफकूद हो, और जिहाद फी सबीलिल्लाह करना तो दूर की बात, उनके रास्तों में रोड़े अटकाते हों ये लोग, तो क्या ये जन्नत में जाएंगे? देखिए ना, इन्होंने सहाबा का जीना दोबर कर दिया, जो बेचारे दीन की जिद्दोजहद करते थे। तो आज इससे अमल की बात लिखे है, कड़वी सी लिख लिखाऊंगी। कोई शख्स जितना मर्जी हाजी, नमाजी, रोज़ेदार, ज़कात देने वाला बन जाए, लेकिन अगर वो अपने घर वालों को दीन की जिद्दोजहद पे रोकता है, तो जन्नत में दाखला मुश्किल है। मैं नहीं कहती नामुमकिन है। बीवी अपने शौहर को रोकती है तो वो मुजरिम है। कई बीवियाँ हैं, अल्लाह उनको हिदायत दे, बेचारे थोड़ा सा दीन का काम करें तो उनको टोकती हैं, आप कमाएंगे नहीं, बच्चों की शादियां नहीं करनी, अब आप ये भी वॉलंटियर करने लगे, आप अब उधर मस्जिद में लग गए, आप इधर लग गए, और इसी तरह कोई मर्द भी कह सकता है, नहीं, दीन की जिद्दोजहद जो नहीं कर रहा, जो उसके रास्ते में रुकावट है, उसके लिए ख़तरा है। फरमाया ला यस्तवून, बराबर नहीं है वो इंदल्ला, अल्लाह के नज़दीक, ये इंदल्ला में भी एक क़यामत छुपी हुई है। एक होता है इंदन नास, जैसे इस वक्त मेरा पढ़ाना आप देख रहे हैं, आप कहेंगे क्या खुशकिस्मत है ये हमें पढ़ा रही हैं, कुछ भी सोच रहे होंगे, गुस्सा है या अच्छा पढ़े, लेकिन ये मुझे पता है कि लोगों को पढ़ाने वालों के बारे में ये गुमान हो जाता है कि ये बड़े नेक हैं। अल्लाह कहता है ये इंदन नास को ना देखो, इंदल्लाह को देखो। हर नेकी के दो रुख होते हैं, और मैं अक्सर वेबसाइट्स पे कभी पढ़ती हूँ ना, वट पीपल से अबाउट अस, तो मेरा ना जहन ज़रा सा उस पर थोड़ा सा नेगेटिव पे चला जाता है। पीपल प्लीजर हैं, लोगों के देखने की बातें, लेकिन असल में तो वो अपने मार्केटिंग के नुकते से कि आप ये चीज़ बेच रहे हैं, ख़रीद रहे हैं, तो देखें दूसरों ने ख़रीदी तो उनको कैसे लगा, अच्छी चीज़ है, कोई बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन लोग मुझे क्या समझते हैं, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट, अल्लाह के हाँ मेरा क्या मुकाम है। ये अंदर से दिल का तस्किया करती है ये सूरत। अपनी हर सरगर्मी को अल्लाह को पेश करें शाम को, अल्लाह जी आप बताइए ठीक है। मैं किसी से जिक्र कर रही थी, अभी तो इधर हूँ, लेकिन जब ट्रिप पे होते हैं तो बहुत ही बिजी डे गुजरता है, लेकिन मैंने किसी ट्रिप के दौरान, दर्स तो कितनी देर का हुआ, 2 घंटे, बाद में शुरू लगा लीजिए 3 घंटे में फारिग हो गए, मीटिंग एक दो होती है तो मोस्टली 2 ही प्रोग्राम होते हैं ऐसे साथियों के साथ, चल उसके इन बिटवीन हम लोग क्या करते हैं आपको तो नहीं पता। तो हम किसी मुल्क में गए हुए थे, तो वहाँ साथियों को पता था ये एक आध दिन के लिए आए हैं, तो किसी ने पहले तो हमें एक ने लंच पे इनवाइट किया हुआ था, दर्स के बाद लंच पे गए होंगे, फिर वहाँ से निकले मीटिंग की, मीटिंग के बाद जहाँ, फिर रात को डिनर था, फिर बीच में सैर थी, तो जब मैं सैर के लिए खड़ी थी तो मैंने वहाँ ये जुमले बोले थे, इस वक्त ये विक्सलर पे नहीं आ रहा कि हम कितने मज़े कर रहे हैं। लोग सोचते हैं हम ट्रिप पे जाते हैं, ओए कितनी मेहनत करते हैं। अल्लाह के बंदो, 2-2.5 घंटे की मेहनत होती है, बाकी सारा वक्त लोग हमारे लाड कर रहे होते हैं, ऐसे हमारे आगे पीछे फिरते हैं जैसे पता नहीं हमने क्या एहसान कर दिया, ये कोई नहीं देखता। तो मैंने किसी को लिखा, मैंने कहा यही है अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के नबी की हदीस के मोमिन के तो दोनों हाथों में लड्डू हैं, दुनिया भी जन्नत है आखिरत भी जन्नत है। तो याद रखिए, ज़ाहरी नेकियाँ और ज़ाहरी गुनाह ये दोनों दलील नहीं है किसी के जन्नत में जाने की। आप मुझे ज़ाहरी नेकी करता देख रहे हैं, गुमान कीजिए, दुआ कीजिए, लेकिन यकीनी तौर पे आप मुझे जन्नती नहीं कह सकते। इसी तरह किसी के हाथ में ज़ाहरी शराब की बोतल पकड़ी हुई है, ज़ाहरी गुनाह है उसका, बट आप ये नहीं कह सकते कि ये शराबी हो सकता है, वो किसी के हाथ से बोतल लेके फेंकने गया हो। ज़ाहिर पे मत जाइए। और वल्लाहु ला यहदिल कौम अज़्ज़ालिमीन, अल्लाह नहीं हिदायत देता ज़ालिम कौम को। अल्लाह सुब्हान तआला इतने प्यारे तस्करों के बाद फरमाते हैं आयत 20, अल्लज़ीना आमनु। एक स्ट्रेच लीजिए, पहला मरहला आमनु का, ईमान लाए जो लोग। दुआ करें अपने लिए भी कि अल्लाह मजअलना मिनहुम, अल्लाह मुझे सच्चे ईमान वालों में कर ले। फिर दूसरा दर्जा, वह हाजरू, और उन्होंने हिजरतें की, क्या कुछ छोड़ा उन्होंने रब के लिए, रात की नींद छोड़ी, फजर के बाद का सोना छोड़ा, आंखों को गंदी चीज़ें दिखाना छोड़ी, कानों को ख़राब चीज़ों के सुनने से रोका। ये सारी छोटी छोटी हिजरतें हैं, गीबतों से हिजरत, चुगलियों से हिजरत, फिर नफ्स परस्ती से हिजरत, कितने तो कपड़ों से हिजरत की, कितने ड्रेस, कितने हाल हुलिए पसंद से सब से हिजरत की। फिर उसके बाद बड़ी हिजरतों के मौके आते गए तो करते ही गए, वो जगह भी छोड़ दी जहाँ पे नेकी नहीं हो रही थी, और वो माहौल भी छोड़ दिया जहाँ दीन पे अमल मुश्किल था। और उसके अगला दर्जा, व जाहदु फी सबीलिल्लाह, फिर जिद्दोजहद की अल्लाह के रस्तों में। देखिए पहले ईमान आता है, फिर ईमान के रस्ते की रुकावटों से हिजरत होती है। अब हिजरत की तो फिर क्या होगा, ऊपर से कोई सोना चांदी बरसेगा, घुन बरसेगा। हिजरतों के बाद मेहनतें, मशक्क़तें, तन्हाइयाँ, फिर जिद्दोजहद, फिर रस्ते बनाने पड़ते हैं, फिर नई जगह पे पाँव जमाने पड़ते हैं। आप कभी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर लें, सिर्फ अपना घर, वो हिजरत ना भी हुई ना, कोई छोटे से बड़े घर में ही गए, लेकिन वो जो एक महीना दो आपको होश नहीं आनी ना, वो जाहदु है। ये अलग बात है कि वो जाहदु आपके अपने नफ्स के लिए है, लेकिन ये जाहदु फी सबीलिल्लाह, ये अल्लाह के रस्ते की है। आप हो सकते इसको याद रखे ना रखे, मुझे अल्लाह हर 2-4 साल बाद इसका मौका दे देता है। जब नए बीज डलते हैं ना ज़मीन में दीन के नाम पे, तो मैं उनकी कोशिशें देखती हूँ। इस वक्त भी किसी से छुपी भी बात नहीं है, पेरिस में इस साल दौरा कुरान हुआ था, अगला कोर्स भी वहाँ हो रहा है अल्लाह के हुक्म से। तो वो लोग जो छोटी छोटी चीज़ों पर मेहनत कर रहे हैं ना, और उनके जो खौफ और अंदेशे हैं, तो मैं उनको देख के हंसती हूँ। अगर इनको क्या पता है, इनको साल बाद अल्लाह ने देखा देना है, और 2 साल बाद ये कहाँ होंगे, और 5 पे की शर्त यह है कि जज्बे यही रखे। वो घबराए घबराए फ़ोन करते हैं, मैं हंसती हूँ आगे से, क्योंकि मैं ये चीज़ें कई दफ़ा भुगत चुकी हूँ। एक प्लान है, उसको जाके कहीं भी फिट कर दें तो वो कुछ अरसे में वैसे ही हो जाता है। बाद में वो चलता कैसे, ये वहाँ के लोगों पे रहता है। लेकिन हर दीन का सफ़र ऐसे ही चला, आमनु, हाजरु और जाहदु। अब जब जिहाद होगा तो क्या होगा, फी सबीलिल्लाही बी अमवालिहिम अनफुसिहिम, जान भी चाहिए, माल भी चाहिए। अब यहाँ रुकिए, बी अमवालिहिम वाला जिहाद बहुत लोग करते हैं खुशी खुशी, नोटों की गड्डियाँ, चेक साइंड, और पेपॉल पे अकाउंट्स, और जो भी बीसियों किस्म के तरीके हैं डोनेशंस देने के, खुशी से लोग देते हैं। मेरा नहीं ख्याल के लोग नहीं देते, मैं नहीं मानती, देते हैं, आज भी देते हैं और बेशुमार देते हैं। बट वन फुसी है, जान नहीं देते, वक्त नहीं देते, दिल का हम और गम नहीं बनाते इसको, अपना जीना मरना नहीं बनाते इसको, पसीना नहीं बहाते, वक्त नहीं लगाते, थॉट्स नहीं देते, अपनी सारी ख्वाब नहीं देते इसको। ये अनफुस में वो नहीं है कि जाके कहीं बकरा ज़बा किया, इस तरह एक बंदा शहीद हो गया। हम तो कहते हैं शहीद होना, ये अल्लाह को क्या ज़रूरत है आपके मेरी शहादत की। अनफुसी हिम में वो पसीने के कतरे भी हैं, वो टूटती कमरे भी हैं, वो बोझल कदम भी हैं जो अल्लाह के रास्तों के काम कर कर के बंदा थकता है। ये बहुत कम है, और आज इस्लाम को इसी की ज़रूरत है। और वो कहते हैं माल तो दे दिया ना, तो मैं आपसे पूछती हूँ, आप छोटे से थे, आपके माँ बाप आपके ऊपर माल लगाते, अच्छी सी मेड रख देते, अपना वक्त ना देते, प्यार ना देते, आपसे मोहब्बत ना करते, तो क्या आप ऐसे ही होते जैसे आज आप माँ बाप के लिए सोचते हैं? याद रखिए कि एक यतीम बच्चे की तरह उस पर पैसे लगाने बड़े आसान होते हैं, पर उसके सर पे बाप का प्यार देना और वो हाथ रखना, ये बहुत कम लोगों को नसीब होता है। आज इस्लाम को हमने यतीम मस्कीन समझकर माल तो बहुत दिया, और है तो सच, मैं फिकी बात नहीं करने लगी, कड़वी बात है ली भी, सच है। लेकिन आप देखिए कि सदका खैरात का लफ्ज़ बोलते हैं, और उसमें एक तीसरा भी डाल लें तो ज़कात लिखें, हाँ सदका खैरात और ज़कात। आप किसी के बारे में सोचें कि ये सदका खैरात लेता है या इसको ज़कात का माल लगता है, आपके ज़हन में उस शख्स के बारे में क्या तसव्वुर आता है? कोई बाइज़त, कोई बहुत मुतासर? नहीं, तरस आएगा, हाय बेचारा सदका खैरात ले रहा है, वो कहते हैं मुझे सदके में से कुछ दे दो, कोई कहता है मुझ पे तो ज़कात भी लगती है। जब किसी पे सदका खैरात और ज़कात का माल लगता है ना, तो वो बेचारा होता है। माजरत के साथ, इस वक्त इस्लाम को भी हमने यही पेश किया। आज हम अपने हाथों की मैल इस्लाम पे देख के कहते हैं चलो ज़कात दे दी और क्या दें इनको, लेकिन कभी बैठ के तो सोचें 2.5 दे के 97.5 अपने हाथ में रखने वाला फिर इस्लाम को कैसे ट्रीट करेगा? जब आप किसी को देते हैं ना, तो माने ना माने आप फिर चाहते हैं कि वो आपकी बातें सुने। दूरियां से है, किसी ने बताया कि कुछ वडेरे यानी पैसे वाले लोग जो होते हैं ज़मींदार, तो जो कमी कमीन है ना, उनको गाली दे के बुलाते हैं, चल फलां की औलाद, गाली दे के, इतनी गंदी गाली कह कहते हैं उसकी औलाद, और जब बड़ी उम्र हुई, होश गई, अब वो गालियाँ अपने बच्चों को देते हैं। और मैं नाम नहीं ले सकती, यहाँ बैठ के उन्होंने मुझे बताया कि उनके मुंह पे पहले गाली आती थी, फिर मासी को बुलाती थी, ओ फलाने की औलाद, फलाने की पुत्र, ओ फलाने की ये, और अब दिमाग ख़त्म हो रहा है ना, तो अब वो गालियाँ अपने बच्चों को दे के बुलाते हैं। तो क्या इस्लाम की कोई इज्जत है? वो कब होगा जब हम कहेंगे कि इस्लाम को तो मैंने अपना सबसे प्यारा हिस्सा देना है? अब आप देखिए, इसके बरक्स आप किसी को गिफ्ट दें और दिल से दें और बेहतरीन दें, तो क्या आपकी नज़र में उसकी इज्जत होती है कि उसको आप गरीब समझ के दे रहे होते हैं? इज्जत समझ के देते हैं ना, कि आप किसी की इज्जत समझ नहीं आ रही कैसे इजहार करें, आप एक बेहतरीन गिफ्ट खरीदते हैं। लिखे इस्लाम के पौधे पे बहार तब आएगी जब सदका खैरात ज़कात की मद से ऊपर उठकर यह गिफ्ट की सतह पे आएगा। एक्सेप्ट मी प्लीज़, ये मेरा कबूल कर लो, ये मेरा रख लो, मुझे ज़रूरत पड़ी मैं ले लूँगा, लेकिन ये मेरे इस्लाम को दे दो, मेरा और मेरे इस्लाम का फ़र्क खाता नहीं है। कभी मुझे ज़रूरत पड़ी तो अल्लाह मैं खर्च कर लूँगा, ना पड़ी तो तेरा। ये बहार आएगी ना आज़मुदरजतन इंदल्लाह, फिर अल्लाह के आगे बड़े दर्जे, फिर आप देखिए दर्जों की किसके सामने बात हो रही है, इंदल्लाह। हम क्या कहते हैं, पहले तो इंदी मेरे नज़दीक और फिर इंदन्नास लोगों के नज़दीक। वाह वाह शोहरतें, इतना देता है फलां, कितनी है, नहीं उसको दिखाइए। और वाउलाइका हुमुल फाइजून, ये हैं कामयाब होने वाले, असल कामयाबी इनकी है, बाकी तो बेचारे रिस्क पे हैं। क्या मिलेगा इनको? युबशिरुहुम रब्बुहुम बिरहमति मिन्हु, इन्हें बिशारत देता है इनका रब अपनी ख़ास रहमत की। ये भी बड़ी बात थी, ये क्या जन्नत व रिदवान, और दूसरी चीज़ अपनी रजामंदी की, ये क्या हदीस में आता है कि जन्नती जब जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह ताला उनको बुलाएगा और कहेगा आज मैं तुम्हें ऐसी चीज़ दूंगा जो मैंने आज तक तुम्हें नहीं दी, और वो क्या है कि आज मैं तुम्हें अपनी रजामंदी देता हूँ, आज के बाद मैं कभी तुमसे नाराज़ नहीं होऊंगा। और रहमत और रिजवान के और भी बहुत से मतलब हो सकते हैं, अल्लाह दुनिया में रहमत कर देगा, मौत अच्छी आएगी, सोहबत सालेहीन होगी, और व जन्नत लहुम फीहा नईम व मुकीम, और ऐसी जन्नतें जिसमें कायम रहने वाली नेमतें होंगी। दुनिया में तो घर मिला था, 2 साल बाद ख़त्म, बैंकरप्सी, आग लग गई, और घर था तो ख़त्म, खुद चले गए। एक साथी हमारी हैं, वो बताती हैं इतने तपाक से शौहर ने घर बनाया और शायद एक हफ्ते के बाद उनकी डेथ हो गई, उस घर में रहती नहीं। वो जब उस घर के कोने खुदरे में जाती है ना, तो कहती ये देखे ये उन्होंने अपने हाथ से ईंटें लगवाई थी, ये पौधा अपने हाथ से लगाया था, ये रस्सियाँ बांधी थी, डोरियाँ बांधी, खुद नहीं रहना नसीब हुआ, वही घर के बिस्तर पे मौत आ गई। लेकिन जन्नत नईम मुकीम, और खालिदीन फीहा अबदा, हमेशा रहने वाले उसमें। इन्नल्लाह इंदहु अजरुन अज़ीम, अल्लाह के पास ही बहुत बड़ा अजर है। तो ये है जिसको कहते हैं कि वफ़ी ज़ालिका फ़लयतनाफ़सिल मुतनाफ़िसू, इसमें मेहनत कर लें जिसने करनी है। फिर आप देखिए कि ये जो बात है ना कि कुफर के साथ नेकियां कबूल नहीं होती, तो इस पर एक रिवायत है, हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी सल्लम से पूछा कि इब्ने जुदान एक शख्स था जो बड़ा फेमस था अपनी सखावत के मामले में, अरब में भलाई के कामों में मसरूफ़ था, ज़िंदगी भर लोगों के काम आता रहा, यानी सोशल वर्क करता था, क्या इसके इन कामों की वजह से अल्लाह इसकी मगफरत नहीं फरमाएंगे? जैसे आज लोग कहते हैं मदर टेरेसा और फलां फलां, लोग पूछते हैं ना, तो उन्होंने भी पूछ लिया, तो आपने फरमाया कि नहीं, इसलिए कि इसने कभी अपने अल्लाह से ये नहीं कहा था कि या अल्लाह मुझे बख्श दे। बात समझ गए? तो इस बात को सुनना। फिर एक और इसमें नुक्ता है, मसाजिद अल्लाह में जमा क्यों आया? एक मस्जिद की बात करना था, क्योंकि ये तो हरम की बात हो रही थी ना, तो यहाँ क्या होना चाहिए था, मस्जिद हराम, तो मसाजिद क्यों आया? ये सिर्फ मस्जिद हराम का नहीं मामला, सारी मस्जिदों का है, क्योंकि कहते हैं कि तमाम मस्जिदें मस्जिद हराम की बेटियाँ हैं। हर मस्जिद उसी रुख पे बनती है ना जिधर खाना काबा है। तो मतलब ये कि आज के भी दौर में जिस मस्जिद में भी आप खिदमत कर रहे हैं, और अगर आपके अपने अकायद में ज़ोफ़ है, कमी बेशी है, तो उससे फ़ायदा नहीं होगा।